جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام الذي اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस वाली क्लास में हम खाने का इंतजाम, फूड मैनेजमेंट का बयान पढ़ते हैं अपने आदत के सिलसिला दुरूस उमूर खानदारी में हुस्ने इंतजाम में से। और इसके खुतबे में भी जो हजरत ने आयत नकल फरमाई सूरह हूद की, उसमें भी खाने पकाने से मुतालिक ही वाकया अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उनके मेहमान आए जो कि अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते थे, पैगाम लेकर के आए थे, इस वजह से उनके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके लिए एक भुना हुआ बिछड़ा ला करके पेश कर दिया। ठीक है, तो उसको ज़बह भी किया होगा, फिर उसको जो है वो उसकी खाल भी उतारी होगी, फिर उसको भूना भी होगा और फिर ला करके सामने पेश किया। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो घर के अंदर किया। अब ये तसरी नहीं है कि सारा भूनने का काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद किया था या जो है वो उनकी अहरिया अम्मा सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किया था। ठीक है, तो इसके अंदर तो इसकी तसरी यानी इसकी एक्सप्लिसिट डिटेल्स नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ भी नहीं है कि किसने किया था किसने नहीं किया था, ये सब भी नहीं है। तो दीगर जराए से जो चीजें फिर सामने आती हैं कि भाई अमूमी तौर पर घर की औरत ही जो है वो खाना पकाती है, अगरचे के बारबेक्यू वगैरह तो आज भी मर्द हजरात कर लिया करते हैं, कबाब वगैरह लगाना आज भी अमूमी तौर पर मर्द हजरात कर लिया करते हैं, लेकिन जो हंडिया चूल्हा वगैरह का काम होता है वो औरतें ही करती हैं, जो कि रोजाना की बेसिस पर होता है ना। वंस इन अ वाइल बारबेक्यू और इस तरह की चीजें तो वंस इन अ वाइल होती हैं। बहरहाल, तो ये तो कुछ बातें थी खुतबे से मुताल्लिक। अब जो है वो हम इसमें बिल्कुल आखिरी के उनवानात पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने मेहमान का सवाब मुफ्त में, कि भाई अगर आप खाना बना रही हैं तो बस मेहमान की नीयत से शोरबा थोड़ा सा ज्यादा बना दें तो नीयत के ऊपर अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देते हैं। तो उसके जमन में और भी बहुत सारी बातें हुई थी कि इंसान की सोच की अल्लाह ताला कदर करते हैं, अगरचे के अमल में तो उसने मेहमान को खाना नहीं खिलाया लेकिन सोच के ऊपर ही सवाब अता फरमा दिया। और सोच का मुस्बत होना कितना जरूरी है, अगर मनफी सोच होती कि जैसे कि कहीं मेहमान ना आ जाए, अगर मेहमान आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी, इस वजह से जो है ना वो मैं शोरबा ज्यादा बना देती हूँ। ठीक है, तो ये मुसीबत ज्यादा सोच जो होती है तो इससे तो फिर अल्लाह ताला भी है ना, अगर आपके साथ कोई मुसीबत ज्यादा सोच करे तो क्या आप उसको रिवॉर्ड देंगे या आप उसको समझाएंगे या उसको जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आपने अगर कोई अच्छा काम करना ही है तो ऐसी सोच के साथ तो अच्छा काम ना करें ना। ठीक है, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला का भी यही मामला है कि भाई हम अल्लाह ताला की रजा के लिए कोई काम करें तो मुसीबत वाला मूड जो है वो नहीं बनाए कि मुसीबत हो जाएगी तो फिर चलो अच्छा है मैं अभी से ही जो है ना वो 2 गिलास पानी ज्यादा डाल देती हूँ। ठीक है, भाई अल्लाह की रजा के लिए करें ताकि फायदा भी हो, करना भी है लेकिन कुछ कमाना भी नहीं है, तो ये तो फिर एक ऐसा बिजनेसमैन हो गया कि जो कि बिजनेस कर तो रहा है लेकिन कमाई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, रोजाना दफ्तर रोजाना जो है वो दुकान पे जाता है, दुकान खोलता है, दुकान में जो है वो चीजें सेट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सारी मेहनत करने के बावजूद शाम को घर आता है तो खाली हाथ, कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो वही मामला है, कभी नेकी करें तो नेकी का सवाब भी कमाने की फिक्र करनी चाहिए। फिर उसके बाद जहन्नुम की आग की याद दहानी में बात करी थी कि जहन्नुम की आग जो है वो जला देती है चीजों को, बॉयल कर देती है चीजों को, भून देती है। तो जहन्नुम में जो है वो अल्लाह ताला से दूरी होगी, तो जहन्नुम का असल अजाब जो है ना वो अल्लाह ताला से महरूमी है, अल्लाह ताला से दूरी है। तो ये महरूमी और ये दूरी जो है जहन्नुम में जाकर के मिले, ये उसी को मिलती है जो कि इस दुनिया में भी अल्लाह ताला से महरूम ही जिंदगी गुजारता है। तो इसी वजह से वो दुनिया में भी जल, भुन और बॉयल हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला से रुजू कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, और अल्लाह ताला के हुक्मों की इल्तिजाम यानी हुक्मों को पूरा करने की मेहनत कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस दुनिया की जिंदगी में जलना, भुनना और बॉयल होना ना पड़े, और आखिरत की जिंदगी में भी ये सब कुछ ना झेलना पड़े। तो अल्लाह को अपना बना लो, ठीक है। अच्छा, जिक्र के साथ खाना बनाना, तो अल्लाह ताला की याद के साथ, तो जिक्र के दो दर्जे आप लोगों के साथ पहले भी बयान किए हैं कि एक होता है अल्लाह को याद करना और एक होता है अल्लाह को याद रखना। तो उसके लिए अंग्रेजी के अल्फाज एक्टिव और पैसिव भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कि एक्टिवली जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है, इसमें कलमा का विर्द भी आ जाता है, इसमें तस्बीहात पढ़ना भी आ जाता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, और इसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत भी आ जाता है। तो ये सब हो गया अल्लाह को याद करना, दुरूद शरीफ भी आ जाता है इसके अंदर, कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाए, ठीक है, कलमा पढ़ते हुए खाना बनाए वगैरह, ठीक है। और एक होता है अल्लाह को याद रखना, कि भाई जुबान से तो आपको बातें करनी है किसी से, आपको जो है वो बच्चों को देखना है, बच्चों से जो है वो कलाम करना है, या किचन में आपके साथ कोई और काम कर रही हैं तो उनके साथ बात करनी है, तो अब आप जुबान से तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिल में अल्लाह ताला का जिक्र करना, इसी को अल्लाह को याद रखना कहा जाता है, ठीक है। तो इसके तहत फिर ये बात भी हुई थी कि भाई मौसीकी ऑन करके खाना ना बनाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला को याद रखने के खिलाफ होगा, क्योंकि मौसीकी हराम है, अल्लाह ताला ने हराम करी है नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से। ये बातें हम तक पहुंची हैं कि भी मौसीकी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ठीक है। बहुत सारी हदीसें इसके मौजूद हैं, कुरान मजीद की आयात की भी तफसीर मौजूद है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुए हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो सोशल मीडिया पे उनको सुनते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि कुरान मजीद की जो वो आयत है वो म्यूजिक के मुताल्लिक नहीं है, हालांकि अहलुल्ला ने उसको म्यूजिक के मुताल्लिक लिखा है कि भाई ये म्यूजिक ही से मुताल्लिक है, लहव और लाब वो जो आयत तुम्हें ध्यान में नहीं है, लेकिन तो वो लोग म्यूजिक को हलाल करने के चक्कर में हैं, कोशिशें कर रहे हैं म्यूजिक को हलाल करार दे दिया जाए, और इस्लामिक स्कॉलर होने का उनके ऊपर लेबल भी लगा हुआ है, और लोग उनको सुनते भी हैं, बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुनते भी हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जी ये जो आयत है ना इसमें म्यूजिक का कोई ताल्लुक नहीं है, इस आयत के म्यूजिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो म्यूजिक तो कुरान मजीद में हराम है ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला उनसे समझेगा, अल्लाह ताला उनके साथ निपटेगा, हमें तो अपने आप की अपनी हिफाजत करनी है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि म्यूजिक जो है वो हराम है। की एक बेहतरीन किताब है, वही जिनके हम तफसीर पढ़ते हैं ना, उन्हीं की किताब है इस्लाम और मौसीकी। अगर किसी को म्यूजिक के बारे में कोई डाउट्स वगैरह हो रहे हो ना, तो उसको उस किताब को मुताले में लाना चाहिए। अच्छा, तो म्यूजिक ना सुने खाना बनाते हुए, और गीबत ना करें, या जो है वो झूठ ना बोलें, और इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें ना करें। और फिर एक सबसे अहम बात क्या करी थी, कि खाना बनाते हुए, खाना बनाते हुए क्या क्या करें, सबसे अहम बात पिछली क्लास के अंदर क्या करी थी वो आप बता दीजिए। इन्होंने क्या लिखा है, जिक्र कसीर से क्या मुराद है, अल्लाह ताला का कितना जिक्र करना चाहिए रोजाना, गौर से क्लास को सुनना चाहिए, ठीक है, गौर से क्लास को सुनना चाहिए, ठीक है। नाशुक्री ना करें। जी ठीक है, वुजू में रहें, आरत वुजू में रहना भी बताया था, ठीक है। और इससे भी ज्यादा बढ़ करके क्या चीज अहम बताई थी कि शुक्रगुजारी की कैफियत के साथ रहना, ठीक है। शुक्रगुजारी की, अल्लाह की जो नेमतें अनगिनत अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली हुई हैं, हमारे ऊपर निछावर की हुई हैं, तो उनके बारे में कैफियत शुक्र में रहना, ठीक है। इस कैफियत शुक्र के साथ खाना बनाना, ठीक है। तो जो शुक्र की कैफियत में खाना बनाएगा तो उसके खाने के अंदर शुक्र के अनवारात आएंगे, और जो दिल की कुढ़न के साथ खाना बनाएगा, बोझ के साथ खाना बनाएगा, अदावत के साथ खाना बनाएगा, कीने के साथ खाना बनाएगा, तो फिर उसके असरात खाने के अंदर आएंगे और जुल्मत पैदा होगी, ठीक है। और इसी तरीके से शुक्र के बाद दूसरी चीज क्या थी उस आयत के अंदर, जिसका जिक्र पिछली क्लास के अंदर भी हुआ था, कि क्या थी वो आयत, हाफिजात मोमिनात, कि मा यफअलुल्लाहु बेअज़ाबिन लइन शकरतुम व आमनतुम, ठीक है। लइन शकरतुम व आमनतुम, तो शुक्र के बाद दूसरी चीज क्या थी, ईमान, ठीक है। तो अगर कोई औरत शुक्र ना कर रही हो तो नाशुक्री की जुल्मत उसके बनाए हुए खाने के अंदर आएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई औरत शक में मुब्तला हो अल्लाह ताला के कलिमात के बारे में, ठीक, अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में शक में मुब्तला हो, तो फिर आपका क्या ख्याल है उसके बनाए हुए खाने के अंदर क्या आएगा, कि ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, या ये अल्लाह का हुक्म क्यों है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये दिस इज टू मच, ठीक है। इस तरह की कैफियात हो, यानी एतमाद ना हो अल्लाह के कलाम के ऊपर, ठीक है, कुरान मजीद की किसी आयत के ऊपर या कुरान मजीद के किसी हुक्म के ऊपर एतमाद ना हो, कि भाई एतमाद क्या होता है, कि इसको सही समझना, इसको फायदे की चीज समझना, ठीक है, बल्कि उसको नुकसान समझ रहे हैं, समझ रही है, ठीक है, कि जी औरतें जो पर्दा करेंगी ना तो इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मिसाल के तौर पर मिसाल है कि अगर औरतें पर्दा करने लग जाएंगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। पर्दा जो है वो औरतों की फलाह बहबूद के रास्ते में रुकावट है, ठीक है। औरतों को घर में रहने का जो हुक्म है, ठीक है, जरूरतन तो ऑफकोर्स वो बाहर जा सकती हैं, लेकिन करना फी बुयुतकुन्ना का जो हुक्म है, या जो है वो आवाज को मुलायम बना करके मर्दों से बात ना करने का जो हुक्म है, तो अब ये तो रुकावट है, ये तो तरक्की के रास्ते में रुकावट है, ये तो औरत की कामयाबी के रास्ते में रुकावट है, ये तो औरत की खुशी के रास्ते में रुकावट है। तो इस औरत का ईमान किधर गया फिर, ईमान तो नहीं है फिर इस औरत के अंदर, ठीक है। तो अब जब इसी औरत के अंदर ईमान नहीं है, जो कि कुरान की आयात की सनातन नफी जुबान से करे या दिल में करे, दिल में करना जो है वो शक कहलाता है, जुबान से करना जो है वो इनकार कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी औरत के फिर बनाए हुए खाने के अंदर फिर क्या चीज आएगी, ठीक है, नूर आएगा या जुल्मत आएगी, ठीक है। तो अब हम कहते हैं जी कि बच्ची बच्चे जो है वो औलाद नेक नहीं बनती, और औलाद जो है वो अफलातून बन जाती है, और औलाद जो है वो गुनाह करती है, और औलाद जो है वो हमारी बात नहीं मानती, और थोड़े नेक हो जाते हैं फिर वो यानी दीनदार होता है, कहते हैं कि औलाद अल्लाह की बात नहीं मानती, तो भाई आपने क्या किया था, ठीक है, आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक करके देखते कि आपने क्या किया था, ठीक है। अल्लाह के हुक्मों के बारे में शक में तो आप खुद मुब्तला थी, ठीक है, तो ना शुक्र किया ना ईमान लेकर के आई, ठीक है। तो फिर उसका असर तो फिर औलाद के ऊपर पड़ेगा ना, आपके बनाए हुए खाने के जरिए से। तो इस वजह से खाना बहुत अहम चीज है, ठीक है। और हमारे दीन के अंदर खाने के लिए क्या मजीद तफसील आई, कि हलाल खाना और तैयब का, अनाल और तैयब, ठीक है। तैयब का मतलब क्या होता है, कोई आप मुझे बता दीजिए। एक तो होता है ना हलाल, ठीक है, तैयब क्या चीज होती है? जिक्र कसीर से क्या मुराद है, अल्लाह ताला का कितना जिक्र करना चाहिए रोजाना? जिक्र कसीर से मुराद है अल्लाह को याद रखना, ठीक है। जो ये आजिज बता रहा था ना, एक होता है अल्लाह को याद करना और एक होता है अल्लाह को याद रखना। तो जिक्र कसीर से मुराद है अल्लाह ताला को याद रखना, ठीक है। याद करना जुबान से किया जाता है, ये आप कसीर नहीं कर सकते, ये आप कसीर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जुबान से बहुत सारे दूसरे काम भी करने होते। तो जिक्र कसीर ये कल्बी जिक्र होता है जो कि अल्लाह को याद रखना के जरिए से किया जाता है। इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं शुक्रगुजारी, इसको कहते हैं ईमान लाना, ठीक है। ईमान, तकवा, शुक्रगुजारी, ठीक है। अच्छा, तो हलाल और तैयब, तो तैयब के तर्जुमा लिख दिया साफ। हमने तो बचपन में पढ़ा था पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। आप कह रही हैं साफ, हमने तो पाक पढ़ा था। तो तैयब जो होता है ना वो पाक के माने में होता है, पाकीज़ा, ठीक है, जिसमें सूद ना हो। ये अच्छा आपने लेकर कहें, सूद ना हो, ठीक है। हम इस वक्त जो है ना वो खाने को खरीदने के जराए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि खाने को आपने खरीदा किस वाले माल से था, ठीक है। तो इस वजह से ये सूद वाला जवाब जो है ना यहाँ पे रेलेवेंट नहीं बनता। अगर जगह, हाँ ऑफ कोर्स, आपका आपका रिस्क ही जो है वो हराम है, अगर सूद है उसके अंदर, तो फिर उससे जो खाना हासिल किया जाएगा तो वो खाना जो है ना वो तैयब की डेफिनेशन में नहीं आ सकेगा, ठीक है। अगरचे कि वो हलाल हो, जबीहा हो और अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो उसको ज़बह करने के वक्त, लेकिन सूद के माल से अगर खरीदा गया है या जुल्म के जरिए से, जुल्म करके किसी का माल हथिया लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, ठीक है, तो उस माल से जो है वो हलाल जानवर खरीद करके खाएंगे तो उस हलाल जानवर वो तैयब की तारीफ में, अब आप उसको थोड़ा सा खींचतान करके, यानी वो माल हराम कहला, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो हम खाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स समझते हैं ना, जो अज्जा होते हैं खाने, तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर तैयब क्या होती है? तैयब वो होता है कि जिसके साथ जो है ना वो हराम का इम्तिजाज ना हुआ हो, मिक्स ना हुआ हो, ठीक है, कॉन्टेमिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कॉन्टेमिनेशन ना हुई हो उसकी, ठीक है, हराम चीजों के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो सही तरीके से हलाल किया जाना होता है ना, ठीक है, देखिए अभी हम कुदरतन सूरह अनआम के अंदर यही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो कुलू वस्कुर इस्मल्लाह अलैहि, कि वो तुम खाओ जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो, ठीक है। तो उसी में फिर ये तफसील भी हमने पढ़ी है कि, या मुफ्ती शफी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की तफसीर जो बयानुल कुरान की शक्ल में उसमें मौजूद होती है, तो उसके अंदर ये भी लिखा है कि भाई दो चीजें होती हैं जो कि खाने को जो है ना वो खराब कर देती हैं। एक तो उसके ऊपर अल्लाह का नाम ना पढ़ा गया हो, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कुमन खाने के खाना जो है ना वो हराम हो जाता है, ठीक है। यानी जानवर हलाल है, जैसे मुर्गी हलाल है, बकरा हलाल है, बकरी हलाल है, और गाय हलाल है, भैंस हलाल है, ठीक है, दुम्बा हलाल है, ठीक है, लेकिन अब उसको जो है ना वो आपने अल्लाह का नाम लिए बगैर जबह किया, यानी किसी और का नाम ले लिया, ठीक है ना। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमान है और उसको पता है कि अल्लाह का नाम लेकर के जबह करना चाहिए, लेकिन वो भूल गया, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हुक्मन जो है ना वो अल्लाह का नाम मौजूद है उसकी जबान में, क्योंकि वो बस भूल गया है। ठीक है, तो एक तो ये चीज लिखी, और दूसरी क्या चीज जो कि उस जानवर को मकरूह कर देती है, वो दूसरी चीज होती है कि उसके अंदर जो हराम चीज है ना वो मौजूद है, एक दुश्मन वो खाने वो जानवर के अंदर एक हराम चीज मौजूद है, वो क्या चीज है? हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा, राइट, दम, ये बहता हुआ खून जो है ना ये हराम है। ठीक है, अब जब जानवर को जबह किया जाता है, जैसा तरीका है जबह करने का कि उसकी दो या तीन क्या है वो तीन काटी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो अंदर बहता हुआ खून होता है ना उसके रगों के अंदर शरीरों में, वो सारा का सारा उसके गले के रास्ते से या वेन्स के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर उसको उसकी स्पाइनल कॉर्ड काट दी जाए, ठीक है, जो उसकी बैकबोन होती है ना वो गर्दन से ऊपर दिमाग तक जाती है, अगर उसकी वो स्पाइनल कॉर्ड काट दी जाए तो इससे क्या होता है कि अब जो है ना वो खून बाहर नहीं निकल रहा होता, ठीक है, या थोड़ा सा निकलता है, बाकी अंदर ही रह जाता है उसका खून। ठीक है, और वो खून क्या चीज है? हराम है, क्लियरली यानी एक्सप्लिसिटली नस के से साबित है, कुरान मजीद की सूरह मायदा की ये तीसरी आयत है, इससे साबित है कि वो चीज, अब वो हराम चीज अंदर रह गई, आपने बेशक अल्लाह का नाम लेकर के जबा किया, या आप मुसलमान हैं अल्लाह का नाम लेना भूल गए, आपने जबा कर दिया, तो ये वाला काम तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन खून तो रह गया ना उसके अंदर जो कि हराम है। ठीक है, गोश्त हराम नहीं है, खून हराम है, तो अब खून हराम के साथ गोश्त का जो कॉन्टेमिनेशन हुई है, जो उसका मिक्सअप हो गया है, तो इससे क्या होता है कि वो जानवर का जो गोश्त होता है ना वो फिर मकरूह हो जाता है, मकरूह हो जाता है, आराम नहीं हो जाता, मकरूह हो जाता है। इस प्रोसेस को जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड भी कट जाए या ये कि पूरा ही गला कट जाए, इस प्रोसेस को हमारी आम जुबान में इसको कहते हैं झटका। ठीक है, तो ये जो झटका होता है ना, झटके से जानवर हराम नहीं हो जाता, लेकिन झटके से जानवर मकरूह जरूर हो जाता है, क्योंकि खून जो है वो बाहर नहीं निकला होता उसका। ठीक है, हराम चीज है खून, बहता हुआ खून, वो बाहर नहीं निकला, जिस्म से बाहर नहीं आया, अब वो अंदर ही मौजूद है, तो फिर वो उससे गोश जो है वो मकरूह हो गया। अब वो मकरूह जब खाया जाएगा तो उसका भी तो असर होगा ना, ठीक है, कराहियत वाली चीज खाई जाएगी तो फिर उसका भी तो असर होगा ना खाने वाले के ऊपर। ठीक है, तो इसी वजह से ये मकरूह तैयब का ऑपोजिट है, हलाल किसका ऑपोजिट है? हलाल हराम का ऑपोजिट है, ठीक है, और तैयब जो है ये मकरूह का की जिद है, मकरूह का मुतजाद है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हलाल तो खाएं लेकिन हम तैयब भी खाएं, यानी जो कि प्रॉपरली जबह शुदा हो, ठीक है, मुसलमान के हाथों से जबह हुआ हो, ठीक है, और ये जो तरीका है प्रॉपर जबह करने का उस तरीके से जबह हो, ठीक है, झटका वाला मामला जिसके अंदर ना हो, वरना फिर असरात होंगे, और फिर असरात के तहत फिर वो फिर होगा कुछ ना कुछ मसला, या तो नेकी की तौफीक नहीं मिलेगी, या तौफीक मिलेगी तो कम मिलेगी। ठीक है, तो मकरूह चीज का फिर यह असर होता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और भी चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। आगे चलते हैं कि खाना बनाने पर सबकी इबादत का सवाब। करें, अगर सब्जी वगैरह काटे हुए अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो वो मकरूह तो नहीं होगी? नहीं, आगे चलें। खाना बनाने पर सबकी इबादत का सवाब। एक और बात सुनिए कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम एक सफर पर तशरीफ ले गए, बहुत सारे सहाबा भी साथ थे। अब उनमें से कुछ सहाबे ऐसे थे कि जिनके जिम्मे खाने पकाने की खिदमत लग गई, बाकी सहाबा तो नमाजें पढ़ते, तिलावत करते। अच्छा सॉरी, करामतों की बात तो हमने पढ़ी नहीं। करामत वाला जब वो पैराग्राफ रह गया कि हमारे हजरत ख्वाजा फजल कुरैशी रहमतुल्लाह इतनी एहतियात फरमाते थे कि बेनमाजी औरत का बना हुआ खाना ही नहीं खाते थे, इसलिए कि ये दिल में जुल्मत पैदा करता है। अगर उनके सामने खाना पेश कर दिया जाता था तो वो खाने को देखकर पहचान लेते थे कि ये नमाजी औरत का बना हुआ है या बेनमाजी औरत का बना हुआ है। वो फरमाते थे कि मुझे खाने का नूर बता देता है कि मुझे किसने बनाया है, इसलिए बावजू होकर जिक्र के साथ खाना बनाना ये घर वालों के लिए नेकी का सबब बनता है। तो हजरत ने अपने दादा बल्कि पर दादा पीर हजरत फजल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की करामत का भी जिक्र कर दिया कि उनको अल्लाह ताला ने कशफ अता फरमाया था, और कशफ अता फरमाने ये कश पहले मिलता है कि नूर पहले नजर आता है, ठीक है, मतलब कश मिलता है तो नूर नजर आता है ना, या जुल्मत नजर आती है ना, ठीक है। तो कश कैसे मिलता है फिर? तो कश मिलता है हलाल और तैयब खाने से, ठीक है। तो वही बात है कि चिकन पहले आई थी कि अंडा पहले आया था, ठीक है। तो हमें कश तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम उसके उसके लिए जो हलाल और तैयब की पाबंदी होती है उसको अच्छा नहीं समझते, तो फिर करामतों के सुनने और पढ़ने का फिर हमें कोई फायदा नहीं होता। हमें फायदा ही होना चाहिए था कि भाई हम भी एहतियात करें जिस तरह से वो एहतियात करते हैं, ठीक है। तो फिर हम चूंकि ये इस तरफ नहीं जाना चाहते ना कि हम वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें जैसी जिंदगी औलिया गुजारते थे, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो फिर शैतान को मौका मिल जाता है, शैतान फिर हमें किस तरफ लेके जाता है, हमें फिर औलिया को खुदा बनाने की तरफ लेके जाता है। फिर हम फिर वो औलिया 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 बस हमारा दीन सिर्फ औलिया औलिया होकर के रह जाता है, ठीक है। हालांकि दीन का मकसद ये नहीं था कि आप सिर्फ औलिया के गुण गाते रहे, ये मकसद नहीं था ना, जश्न मनाते रहे, जैसे अभी जश्न मीलाद उन नबी, अल्लाह के नबी का जश्न मना रहे, तो ये तो दीन नहीं था, ठीक है। दीन तो था अल्लाह के नबी से सीखना और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना। जाहिर है जब आप ये काम नहीं करना चाहेंगे अपने नफ्स की वजह से, अपने ख्वाहिशात की वजह से, तो फिर दूसरी तरफ यही होगा ना फिर कि आप लग जाएं जश्न मनाने के ऊपर। तो लोग नबी के जश्न मनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोग औलिया का भी जश्न मनाते हैं, उर्स मना रहे होते हैं, उसमें धमाल डाल रहे होते हैं और पता नहीं और क्या क्या कर रहे होते हैं, या ये कि बस औलिया औलिया के किस्से कहानियां सुन रहे होते हैं और बस यही सारा का सारा दिन रह जाता है, ठीक है। तो हमें तो उनसे सीखने के लिए उनकी बातें बताई जाती हैं, हमें सीखना चाहिए। आगे फरमाते हैं कि एक और बात सुनिए कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम एक सफर पर तशरीफ ले गए, बहुत सारे सहाबा यानी बहुत सारे अफजल तरीन औलियाए कराम, उम्मत के सबसे अफजल औलियाए कराम कौन थे? सहाबा कराम, ठीक है। तो बहुत सारे सहाबा कराम भी साथ थे। अब उनमें से कुछ सहाबा ऐसे थे कि जिनके जिम्मे खाने पकाने की खिदमत लग गई, बाकी सहाबा तो नमाजें पढ़ते, तिलावत करते और खूब इबादत में लगे रहते, लेकिन जो खिदमत की जमात के लोग थे वो सिर्फ खाने पकाने की खिदमत में ही लगे रहते। जब चंद दिन का कयाम खत्म हुआ और वो वापस आने लगे तो खिदमत की जमात ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे भाई तो खूब जिक्र तिलावत और इबादत के अंदर मशगूल रहे, और उन्होंने तो अल्लाह को इबादत के जरिए से खूब राजी किया, और हम तो सिर्फ आग जलाते थे और खाना बनाते थे और उन लोगों को सर्व करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों को जितना सवाब मिला जो खिदमत की जमात में काम करने वाले हैं उनमें से हर हर बंदे को उतना ही सवाब मिलेगा, ठीक है। तो खिदमत की जमात वालों को उतना ही सवाब मिलेगा जितना के इबादत कर मिला। इसी वजह से हमारे हजरत अक्सर ये जुमला फरमाया करते थे कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से तो खुदा मिलता है, ठीक है। यानी जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जन्नत कोई गैर अहम चीज है, ठीक है। लेकिन इस फकरे का मकसद क्या है बोलने का? इस फकरे को बोलने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है, ठीक है। और जन्नत मिलने से मुराद यहां पर क्या है? इस फकरे के अंदर जन्नत का लफ्ज किस मुराद के साथ बोला गया है? ठीक है, इस मुराद के साथ बोला गया है कि जन्नत की जो चीजें हैं ना, ये तो गोया के चीजें हैं, ठीक है, लेकिन असल तो अल्लाह ताला है, ठीक है। तो गोया उनको जो है ना वो चीजें दे दी जाएंगी जो इबादत करते हैं, लेकिन जो खिदमत करते हैं उनको जो है वो अल्लाह ताला की खुसूसी मोहब्बत मिलेगी, ठीक है। तो इसको लिटरल अल्फाज में समझने की कोशिश ना करें, ठीक है, कि भाई अच्छा जन्नत मिलेगी, जन्नत तो कम कम दर्जे की चीज कह रहे हैं और इनको अल्लाह मिलेगा तो गोया कि जन्नत कम दर्जे की चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जन्नत जो है ना ये वो दारुस्सलाम है जिसकी तरफ अल्लाह ने बुलाया है, ठीक है। और जन्नत में जाकर के सबसे बड़ा वहां पे इनाम यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा, ठीक है। तो जन्नत बिल्कुल भी कोई गैर अहम या कम अहम चीज नहीं है, बस ये एक मुहावरा है, जिस तरह एक ज़र्बुल मिसल होती है ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इसका मतलब ये कोई थोड़ी होता है कि कोई आसमान से गिर करके खजूर में अटक जाए, भाई उसकी यानी फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि खजूर का दरख्त अगर नीचे आ भी जाए ना वो उसमें अटक नहीं सकता, वो तो जाएगा नीचे डायरेक्ट, ठीक है। शायद खजूर की किसी लकड़ी से उसको और चोट ही लग जाए, लेकिन उसने अटकना नहीं है खजूर के अंदर। तो इस जरबुल मिसल का मतलब ये कोई थोड़ी है कि वो वाकई खजूर में अटक जाएगा या वाकई आसमान से गिर रहा होगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये भी एक जरबुल मिसल है कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है, इसका लफ्जी माना ये नहीं है, ठीक है। जिस तरह आसमान से गिरा खजूर से में अटका का लफ्जी माना वो नहीं है, ठीक है। मफहूम क्या है इसका, मकसद क्या है इसका, मकसद यह है कि खिदमत को उजागर किया जा रहा है, खिदमत की अजमत को जो है ना वो बढ़ाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आमतौर पर इंसान का नफ्स जो है ना वो खिदमत करना पसंद नहीं करता, ठीक है, नफ्स पसंद नहीं करता कि उसको किसी की खिदमत करनी पड़े, और शैतान जो है वो उसको उकसाता है कि देखो तुम तो लगे हो बच्चे पालने के अंदर, तुम तो लगी हुई हो खाना बनाने के अंदर, और वो देखो जाती है ऑफिस में, वहां पर जो है वो अच्छी सी कुर्सी पे बैठती है और उसके लोग आ करके उसको सलाम करते हैं, और वो जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है, और जो है ना वो तो आगे पीछे लोग उसके फिरते हैं और उसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं और मैडम बोलते हैं उसको, और तुम घर में बैठे बच्चे पाल रही हो, ये शयातीन ये वाले काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अफजलियत बयान करते हैं किसी उस चीज की जो कि बंदा नहीं कर रहा होता, और जो कर रहा होता है ना उसको जो है वो बेकार बना करके पेश करते हैं, ठीक है। तो उनको समझाने के लिए इस किस्म के जुमले बोले जाते हैं कि भाई आप खिदमत कर रही है ना तो आपको तो अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, और वो जो है वो खाक छान रही है, और वो अपने घर की बजाय दूसरों के घरों की जो है वो चाकरी कर रही है बेसिकली, ठीक है। जिसका अल्लाह ताला ने खिदमत करने के लिए उसको कहा था उसकी बजाय बॉस की खिदमत कर रही है और कॉरपोरेशन की खिदमत कर रही है, और जो है वो अपने मैनेजर की खिदमत कर रही है, और जो है वो ये इन चीजों की खिदमतें कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो अकल इस्तेमाल करते हैं और अपनी अकल सलीम को इबादत से रखते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ वाकई मुझे तो अल्लाह को राजी करना चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि मैं अपने नफ्स को राजी करूं या शयातीन को राजी करूं, मुझे तो अपने परवरदिगार को राजी करना चाहिए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि इवन उन इबादत करने वालों को भी, तलावतें करने वाले और नमाजें पढ़ने वाले और जिक्र करने वाले, तो उनको जितना सवाब मिला, खिदमत करने वालों को खिदमत के जरिए से उतना सवाब मिला। क्यों? उसकी वजह भी यही है कि भाई वो अगर भूखे होते हैं ना तो वो भी तिलावतें नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर उनके लिए बाथरूम साफ करने वाला कोई ना होता ना तो वो भी बैठ करके जिक्र नहीं कर सकते थे, वो तो जिक्र कर ही इसलिए रहे हैं बिकॉज समवन एल्स इज कुकिंग फूड फॉर देम, राइट, समवन एल्स इज क्लीनिंग द बाथरूम फॉर देम, ठीक है ना, समवन एल्स इज प्रोवाइडिंग देम द बेडिंग टू स्लीप ऑन, राइट। वरना अगर कोई इनके लिए नहीं कर रहा होता तो वो बैठ के तिलावत ही नहीं कर सकते थे, उनको फिर अपने खाने का इंतजाम करना पड़ता, ठीक है, उनको फिर जो है ना वो अपने सोने ओढ़ने का इंतजाम करना पड़ता, फिर उनको उठ करके जो है ना वो अपने फिर बाथरूम की सफाई का इंतजाम करना पड़ता, ठीक है। तो समवन एल्स इज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू डू द इबादत, ठीक है, तो जो पॉसिबल बना रहा है तो उसको कुछ ना मिले ये कैसे हो सकता है, ठीक है, बल्कि उसको उतना ही मिलेगा जितना करने वाले को मिल रहा है। इसलिए आप घर में जो खाना बनाती हैं तो उसे खाकर आपके घर के जितने लोग भी नेकी करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, उनका सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए खाना बनाने को एक एजाज समझे, एजाज समझे, इसको कोई मलामत वाली चीज ना समझें, ठीक है, अपने लिए एक सआदत समझें, खुशकिस्मती समझें खाना बनाने को, कि मेरा बनाया हुआ खाना ये लोग खाएंगे और उनकी नमाजों का, रोजों का, नेकी का सवाब हमें भी मिलेगा। औरत के ऊपर अल्लाह ने कितनी रहमत कर दी है कि थोड़ी देर खाना बनाए और फिर मर्दों की इतनी इबादतों का सवाब घर बैठे उसको मिल जाए, ठीक है। सिंपल खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और उससे जो है ना वो ये जो थोड़ी देर जो हजरत ने लिखा है ना, ये इसको रियलिटी भी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि सिंपल खाना थोड़ी देर में बन जाता है, और जितना उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जितना उसको जो है वो यानी मुजयन करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपका वक्त लगेगा उसके अंदर, ठीक है, और सेहत भी खराब उसके ऊपर, सोने पर सुहागा, सेहत भी खराब। तो खाना बनाना जो है वो यहाँ पे मुतलकन खाना बनाने की बात है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि आप इतना घंटों खाना बनाएंगी और ऐसे उसको मुजयन करेंगी और ऐसे उसके जो है ना वो डेकोरेशन करेंगी और ये करेंगी तो आपको सवाब मिलेगा। वो वंस इन अ वाइल कोई खास ऐसी कोई ओकेजन हो, या कोई खास मेहमान आ रहे हो, कोई बुजुर्ग आ रहे हो, कोई दीन की निस्बत से अगर आप उनकी खिदमत की नीयत के साथ कुछ अच्छा जो है वो चीज प्रिपेयर कर रही है, वो एक्सेप्शन होते हैं ना, वो रूल नहीं होता। रूल तो ये होता है जो रोजाना करने का काम है। तो अच्छा खाएं भाई, हलाल खाएं, तैयब खाएं, ठीक है, जिससे कि आपकी भी सेहत अच्छी रहे और आपके बच्चों की और आपके शोहर साहब की भी सेहत अच्छी रहे, तो वक्त भी कम जाया होगा इसके अंदर, या वक्त भी कम सर्फ होगा इसके अंदर, जाया होने का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त कम सर्फ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक और बड़ा अहम नुक्ता दिल में आया था कि खिदमत करने से खुदा मिलता है। तो अब जो है ना ये रह गया इसके अंदर एक मसला इल्म का, ठीक है, इल्म का मसला, कि भाई अगर हम खाना बनाएंगे और अगर हम बाथरूम साफ करेंगे और अगर हम घर में डस्टिंग करेंगे, ठीक है, और अगर हम जो है वो और इस किस्म के यानी मेंटेनेंस वाले काम करेंगे तो फिर हम इल्म कब हासिल करें, ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए भी तो वही 24 घंटे के अंदर से ही आपने टाइम निकालना है ना, ठीक है, तो फिर हम इल्म कैसे हासिल करेंगे या कब हासिल करेंगे, तो इसका क्या जवाब, इसका जवाब जरा गौर करके बताएं। इसका जवाब इतना सियासी जवाब नहीं है, सियासी जवाब का मतलब पॉलिटिकली करेक्ट, जिसको कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट जवाब, वो नहीं है इसका, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो इल्म के अलावा भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इल्म हम कैसे हासिल करेंगे या कब हासिल करेंगे, अल्लाह से मदद मांग करके हासिल करेंगे भाई, अल्लाह से मदद मांगने के बाद फिर क्या करेंगे, अल्लाह ताला फिर मदद कर देंगे हमारी, ठीक है। तो चलें अब आप इसका जवाब दें कि अल्लाह ताला फिर आपकी कैसे मदद करेंगे, कि अल्लाह ताला जो है वो AI रोबोट्स अता फरमा देंगे, है ना, वो आपके लिए खाना बनाया करेंगे, अल्लाह की मदद आ गई, AI रोबोट्स, रोबोट्स मिल गए खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे फिर इसके बाद, आप करके इल्म हासिल करें, क्योंकि अब रोबोट्स जो है वो खाना बना रहे हैं, अब आप इल्म हासिल कर लेंगे, तो ये एक जवाब हो गया। तो लेकिन वक्त में बरकत हो जाएगी, फिर वक्त में बरकत 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ये इधर ही जवाब दे, जिसने इधर देना है ना इधर ही जवाब दे, और डांट के लिए तैयार है। अगर आपने डांटने वाली बात करनी है तो आपको डांट पड़ेगी। ये अलग से जवाब मिला है, इधर जवाब नियत देख के। क्या मतलब नियत देख के? अल्लाह ताला नियत देख के इल्म तो फरमा देंगे। वक्त को सही तरह तकसीम करेंगे, काम के वक्त काम और पढ़ने के वक्त पढ़ाई। घर का काम अच्छा खासा होता है वैसे, अगर बच्चे थोड़े ज्यादा भी हो, ज्यादा हो जाए तो और ज्यादा काम हो जाता है। और अगर यानी बहुत सारे लोग जाहिर है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है, वो रहना पड़ता है क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं और हत्ता के रेंट्स भी इतने महंगाई वजह से, हमारी नेकियों की वजह से महंगाई बढ़ गई है ना, तो जरा सा नेकियां कम करनी चाहिए ना उस, ताकि महंगाई थोड़ी नीचे आ जाए। तो महंगाई जो इतनी बढ़ गई है तो अब आप अलग अलग घर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से ज्वाइंट फैमिली में ही रहना पड़ता है भाई। अब क्या करें, अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, सारे बंदे भी मिलके कमाते हैं तो फिर भी जो है वो घर खरीदना जो है वो मुमकिन नहीं होता, ठीक। तो बहरहाल अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो और भी ज्यादा काम बढ़ जाते हैं, ठीक है, रूटीन बनानी होगी उसके लिए। और अगर काम ज्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे? देखिए यार, जिस ये बात समझाना चाह रहा है कि जो इल्म हासिल करना होता है ना, इल्म हासिल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इल्म हासिल करने का मतलब क्या होता है? इल्म हासिल करने का तरीका क्या होता है? जी ये बताएं ना, इल्म हासिल करने का तरीका क्या? इल्म हासिल कैसे किया गया? क्लासेस लेनी। पहले उन्होंने एक जवाब तो दिया, कोई और? क्लासेस लेनी, दर्स को सुनना, उस्ताद से, उस्ताद, उस्ताद से सीख कर अमल में लाना, बयान सुनना, ये इल्म हासिल करने का तरीका होता है। तो गौर से सुनना, अदब और तवज्जो से सुनो। ओके, ठीक है, हाँ ये होता है इल्म हासिल करने का तरीका, गौर से सुनना। और दूसरी भी चीज होती है भाई, खाली अल्लाह ताला ने आपको काम तो नहीं दिया ना, इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ कान नहीं दिए, इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कान के बाद जो बहुत अहम तरीन चीज दी है वो आंखें दी, ठीक है। तो इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं जो सबसे अहम चीज है, और इल्म का सबसे अव्वल जरिया होता है वो कान होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो आंखें होते हैं। अगरचे के थोड़ा बहुत इल्म आप नाक से भी हासिल कर सकते हैं, वो क्या कि भी फलानी चीज खुशबूदार है कि बदबूदार है या कुछ भी दार नहीं है, ये इल्म आप नाक से हासिल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इल्म जो होता है वो हमारी काफी कम होता है ना, ये इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता कि भाई आप हर वक्त खुशबुएं जो है वो मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाक से बहुत कम इल्म हासिल किया जाता है। और एक और भी जरिया होता है इल्म हासिल करने के लिए, आपकी स्किन, टच, जिसको टच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टच करके भी इल्म हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो कितना इल्म होता है, ये चीज गर्म है या सर्द है या नरम है या सख्त है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है ना। तो टच से भी इल्म हासिल किया जा सकता है लेकिन बहुत कम उसका दायरा कार होता है। नाक से भी इल्म हासिल किया जा सकता है लेकिन उसका भी दायरा कार बहुत कम होता है। तो दायरा कार जिसका सबसे ज्यादा होता है वो होता है कान, और दूसरे नंबर पर आंखें, ठीक है। फिर उसके बाद असबाब में जो है ना वो चीजें क्या आती हैं, वो आते हैं उस्ताद, सबसे पहले उस्ताद। एक तो ये होगा ना असबाब जो कि आपके अपनी बॉडी में मौजूद है, एक बॉडी के बाहर असबाब कौन से हैं इल्म हासिल करने के, What are the means of gaining knowledge outside योर ओन सेल्फ, ठीक है, आउटसाइड योर ओन सेल्फ, वो फिर उस्ताद है और दूसरी जो है वो किताबें हैं, ठीक है। तो इल्म जो है ना वो इन चीजों को इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है और बहुत अच्छा हासिल किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इल्म होता है ना, जिसको के एकेडेमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये ना तो हर एक के बस में होता है और ना हर एक के लिए मुफीद होता है। बाकायदा इंस्टीट्यूशनल इल्म हासिल करना, सिस्टम में जाकर के इल्म हासिल करना, इसके लिए दो बातें लिख लें। नंबर 1, ये हर एक के बस में नहीं होता, ठीक है ना, एवरी वन डज नॉट हैव एक्सेस टू एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड नंबर 2, के हर एक के लिए इंस्टीट्यूशनल इल्म मुफीद भी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको कितना जो है वो चाहिए और आपको जो है वो कहाँ से मिल सकता है। तो अगर वो इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्विप करके भेजा है ना, वो तो कान और आंखें हैं, तो इनके जरिए से सबसे पहला काम उस्ताद यानी कुतुब, जिन्होंने लिखा ना कुतुबबीनी, यानी उन लोगों को तवज्जो से देखना, ठीक है, और उनकी बातें सुनना, ये कुतुब बीनी कहलाता है। अगरचे कि बीनी का लफ्ज देखने के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुतुब बीनी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप देख रहे हैं उनको बस, नहीं, बल्कि इसमें उनकी बातें सुनना, ठीक है। कुतुब उन लोगों को कहते हैं कि जो कि पॉइंट करते हैं हकीकत की तरफ, जो हकीकत की तरफ आपकी आपकी तवज्जो मबजूल करते हैं ना, उनको कुतुब कहा जाता है, हकीकत की तरफ, ठीक है, ऐसे लोगों को कुतुब कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को देखना, औरत के लिए अगरचे के देखने की भी इतनी वो नहीं है कि अपनी निगाहों को झुका के रखो औरत के लिए कि भाई आप मर्दों को देखे नहीं, लेकिन सुनना, उनको गौर से सुनना, जैसे कि मैं तो इस काबिल नहीं हूं कुतुब के डेफिनेशन में आने के, लेकिन अभी आप बैठे हुए क्या करिए, आप मुझे देख तो नहीं रही ना, सुन रही है ना, ठीक है। तो सुनने से जो है वो इल्म हासिल होता है। और दूसरी चीज कुतुब बीनी, कुतुब जो है वो आमतौर पर सिर्फ लिखी हुई चीज होती है, उनको आप आंखों से पढ़ ही सकते हैं, उनको सुन नहीं सकते, अनलेस के आप उनको ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट कर दें। तो आजकल के जमाने में तो कुतुब बीनी को भी, कुतुब को भी सुना सुना भी जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कुतुब को खाली पढ़ा ही जाता है ना, तो इस वजह से कुतुब बीनी और कुतुब बीनी, ये होता है इल्म का जरिया, ये होता है इल्म का तरीका, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इल्म जो है ना, ये डिपेंड करता है, हर बंदा हासिल नहीं कर सकता और हर बंदे के बस में भी नहीं, ठीक है। तो इसमें फिर मजीद तफसील होती है कि भाई बंदे को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने अहवाल के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इल्म का जो है ना फिर वो तय करना चाहिए कि क्या उसके लिए ये फायदेमंद है या उसके लिए फायदेमंद नहीं है, क्या उसके बस में है या उसके बस में नहीं है। लेकिन कुतुबबीनी और कुतुबबीनी जो है ये बंदा कर सकता है, बहुत आसान अल्लाह ताला ने बनाया, सुनने वाला मामला और किताबों को पढ़ने वाला मामला। किताब खरीदने की ताकत अमूमी तौर पर सबके पास होती है, अगर नहीं भी है तो उधार लेकर के भी किताब पढ़ी जा सकती है। हम तो बचपन में उधार लेकर के किताबें पढ़ते थे, लाइब्रेरियां होती थी, ठीक है ना, वो इश्तियाक अहमद की नॉवलों की लाइब्रेरी अनफॉर्चुनेटली होती थी, वहां से हम उधार लेकर के आ रहे होते थे, 1 रुपए की जो है वो एक दिन के लिए किताब उधार मिलती थी, इश्तियाक अहमद की एक नॉवल वो ला करके पढ़े होते थे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इश्तियाक अहमद की और खाली पुरस्कार किस्म की नॉवलें पढ़ें, बल्कि कहने का मकसद ये है कि भाई कुतुब तो उधार भी लेकर के पढ़ी जा सकती है, इतना अल्लाह ताला ने आसान बनाया, ठीक है। और खरीदना भी जो है वो आज भी अच्छी किताबें खरीदना तो इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो जो चीजें एक्सेसिबल हैं, जो चीजें आपके लिए आसान हैं, उनके जरिए से इल्म हासिल करें। खाली जो है ना वो लोगों की देखा देखी, भाई इंस्टीट्यूशन में जाना है और वहां जाकर डिग्रियां हासिल करनी है तो इल्म हासिल होगा और अगर नहीं करेंगे तो इल्म नहीं हासिल होगा, ये जहालत की बात छोड़ दें, ये जहालत की बात छोड़ दें, ये कि आपको जाहिल रखने के काम आती हैं, इल्म हासिल करने के काम नहीं आती, इस तरह की बात है। भाई अल्लाह ताला ने सुनने का मौका अता फरमाया है, सुने और गौर से सुने, तवज्जो से सुने, ठीक है। जैसे कि सूरह अनफाल की वो आयत नंबर 20 से लेकर के जो है वो 24 तक जो है वो आप पढ़ें, ठीक है, कैसा अल्लाह ताला ने सुनने के ऊपर जो है वो एम्फसाइज किया, कितना अहमियत दी है सुनने की बात को, ठीक है। तो अब ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इल्म को जितना अहम बना करके पेश किया गया है ना, तो इसका एक बहुत नेगेटिव असर हुआ है। इसका नेगेटिव असर ये हुआ है खुसूसन औरतों के ऊपर, ठीक है, खुसूसन औरतों के ऊपर इसका नेगेटिव असर ये हुआ है कि जो रोल ऑफ वाइफ एंड मदर था ना, वो बिल्कुल इसके अंदर दब करके रह गया है, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने रोल ऑफ ए वाइफ एंड रोल ऑफ ए मदर बनाया था, वो इंस्टीट्यूशनल इल्म के जो इमारतें खड़ी कर दी गई है ना, उसके अंदर ये रोल जो है वो दब करके रह गया है। हालांकि इसके लिए जो इल्म हासिल करना था, हाउ टू बी ए गुड वाइफ एंड हाउ टू बी ए गुड मदर, वो कुतुबबीनी और कुतुबबीनी के जरिए से हासिल हो सकता था और सफिशिएंटली हासिल हो सकता था बहुत कुछ उसके जरिए से किया जा सकता था, लेकिन इल्म को पाबंद कर दिया इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है, कि बस इंस्टीट्यूशन में इल्म है और अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो इल्म नहीं है। अब भाई जब आप इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएंगे तो फिर वहां तो फिर एक तो ये कि आपका वक्त जो है वो वहां पे जो लगेगा तो आप फिर अपना रोल तो नहीं अदा कर सकेंगे ना, और दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशंस तो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल सकता, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होगा ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जो गालिब ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो वो उन्हीं के कंट्रोल में इंस्टीट्यूशन होगा ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बगैर ऑर्गेनाइजेशन के नहीं चल सकता, राइट। तो गालिब ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में इस वक्त कौन सी है? ईमान वालों की है, नेकोकारों की है, अल्लाह वालों की है, या कुफर की है, दज्जाल की है, ताहूत की है? तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तो उन लोगों के कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो जब औरत जो होती है वो उनके कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाती है तो वो तो फिर उसका जो अल्लाह ताला ने रोल बनाया है वो उसको उसके ऊपर तो नहीं प्रमोट करेंगे ना, उसके ऊपर तो उसका एनकरेज नहीं करेंगे ना। तो एक तो वक्त वहां पे आपका चला जाता है, दूसरा जो है वो अब वो आपके जहन साजी कर रहे होते हैं, वो अब आपकी जो है वो दिल शादी कर रहे होते हैं कि ये क्या बच्चा पाल रही हो, ये क्या तुम जाया हो रही हो, ये क्या तुम जो है वो बेवकूफी के कामों में लगी हुई हो, तुम एक्सप्लॉइट हो रही हो, तुम्हारे ऊपर ऑपरेशन है, तुम्हारे ऊपर डिप्रेशन है, तुम्हारे ऊपर ये है, तुम्हारे ऊपर वो है, ठीक है। तो भाई इस वजह से इल्म को जो है ना, वी नीड टू रिक्लेम नॉलेज, ठीक है, वी नीड टू रिक्लेम नॉलेज जो दूसरों के हाथों में चली गई है और हमने दे दी है दूसरों के हाथों में, अपनी मर्जी से दी है कि भाई अब आप हमें पढ़ाएं, क्या पढ़ाना है, ठीक है, वो गैरों के, काफिरों के, दज्जालियों के हाथों में हमने खुद दे दी उठा करके, तो वी हैव टू रिक्लेम इट बैक। भाई असल जो हमारा अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है ना इल्म का, उस निजाम को पैदा करें, दोबारा से जिंदा करें उस निजाम को, पैदा नहीं करें, वो तो पैदा हुआ हुआ है, जिंदा करें उस निजाम को फिर से। वो निजाम क्या है? कुतुब बीनी और कुतुब बीनी का निजाम, और उसके लिए गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना उसकी शर्त है जो कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर हमें बताई हुई है, ठीक है। और किताबों को, अच्छी किताबें, अच्छे अल्लाह वालों की किताबें पढ़ें, ठीक है, तो उससे जो है वो बात समझ में आएगी करना क्या है। बाकी बस एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, उसको करके आज हम मुकम्मल करते हैं। बेहतर कुकिंग जानने वाली औरत अल्लाह की पसंदीदा औरत है। खाना एक हुनर है, हर औरत को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। हदीसे पाक में है कि अल्लाह ताला हुनर वाले बंदे को बेहुनर बंदे की निस्बत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। अगर हुनर वाला मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है तो जिस औरत को बेहतर कुकिंग आती होगी वो भी अल्लाह को ज्यादा पसंद होगी, ये बनिस्बत उस औरत के जिसको कुकिंग आती ही नहीं है। इसलिए कि ये एक फन है, ये एक हुनर है, जिस औरत को आता है वो मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से कर सकती है, चुनाचे खाना शौक से बनाए, और जिक्र के साथ बनाएं। ये भी जहन में रखें कि जिस तरह हम दुनिया में खानों के मोहताज हैं, इसी तरह हम आखिरत में भी मोहताज होंगे। अल्लाह ताला ने जैसे दुनिया में ये नेमतें दी हैं, अपने वक्त पे अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी ये नेमतें अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।